श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 3। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यत्यज् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो आप स्पष्ट रूप से भगवान का उत्तर समझ रहे हैं। प्रश्न था कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कौन है और ज्ञान और ज्ञेय क्या है, मतलब जानने योग्य वस्तु क्या है और ज्ञान क्या है। तो भगवान ने एक ही श्लोक में उत्तर दे दिया कि शरीर को जानना और उसके ज्ञाता यानी आत्मा और भगवान को जानना, यह ज्ञान कहलाता है। और भगवान भी ज्ञेय, क्षमा कीजिएगा, सर्वज्ञ है, भगवान भी क्षेत्रज्ञ हैं, अर्थात भगवान भी शरीर को जानते हैं। लेकिन अंतर ये है, इस तात्पर्य में आ जाएगा ये बात, कि हम केवल अपने शरीर के सुख दुख को जानते हैं, लेकिन भगवान सभी जीवात्माओं के शरीर के सुख दुख को जानते हैं, ये अंतर है। तो भगवान के क्षेत्रज्ञ होने में और हमारे क्षेत्रज्ञ होने में अंतर है। और एक अंतर ये भी है कि हम अपने शरीर के सुख दुख से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भगवान सभी के सुख दुख को जानते हैं, लेकिन उससे वो दुखी नहीं होते, वो परेशान नहीं होते, लेकिन जानते हैं सुख दुख हर जीवात्मा के शरीर के द्वारा उत्पन्न। तात्पर्य, शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ, और इनके आपसी संबंध को समझने को संबंध ज्ञान कहते हैं। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्व अंश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। थोड़ा समझ लेना चाहिए शब्दों को। व्यष्टि का मतलब है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। तो जिस प्रकार से मैं अपने शरीर में हूँ और अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव कर रहा हूँ, और आप लोग अपने अपने शरीरों के सुख दुख का अनुभव करते हैं, दूसरों के शरीर के दुख का और सुख का अनुभव हम नहीं करते हैं, हम केवल संवेदना प्रकट कर सकते हैं, दुख का अनुभव नहीं होता है। अगर मेरी उंगली कटती है तो उसका दर्द मैं ही अनुभव करता हूँ, दूसरा व्यक्ति अनुभव नहीं करता है। लेकिन भगवान शरीर सबके शरीर में विद्यमान रहते हैं और सभी के शरीर के सुख दुख को अनुभव करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि परम ज्ञाता का ये भी है कि उससे प्रभावित नहीं होते। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद्गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये तो स्पष्ट है कि अगर भगवद्गीता आप नहीं सुन रहे होते तो इसके बारे में कोई विवेचना नहीं कर पाते, और ज्ञान होने की तो बात छोड़ दीजिए, हमारी रेंज में भी नहीं आता है। मतलब हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें भी इस प्रकार की बातचीत नहीं आती है कि किस प्रकार से हमारा शरीर एक खेत के समान है और भगवान और आत्मा उसके जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया, कर्म क्षेत्र का अर्थ है शरीर। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता, स्पष्ट है। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं, ये भी मैंने समझा दिया। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपनी भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, जितने भी हमारे शरीर हैं, हम जब सोलो शरीर धारण किए हुए हैं, देही लोग, हम सब लोग किराएदार की तरह हैं। तो किराएदार को भी कुछ राइट्स होते हैं, राइट का मतलब अधिकार होते हैं रहने का, उपयोग करने का, लेकिन कमरा या मकान उसका नहीं होता है, वो मकान मालिक का होता है। तो जितने भी शरीर हैं उनके मकान मालिक या उन शरीरों के मालिक जो हैं वो भगवान हैं, और हम सब लोग जो हैं वो टेनेंट्स हैं, किराएदार की तरह हैं। जैसे राजा सभी संपत्तियों का मालिक होता है, बावजूद इसके कि हम जो जो लोग खेत रखते हैं वो कह सकते हैं कि ये वस्तु मेरा है, यह स्थान मेरा है, लेकिन अगर राजा चाहे तो उसका वो छीन भी सकता है। और दूसरी बात यह है कि कर लेता है। अगर केवल व्यक्ति खेत का मालिक होता तो उसे राजा को कर देने की क्या आवश्यकता है। तो यानी कि राजा जो है वो मुख्य अधिपति है, मुख्य मालिक है, और जो खेत जो खेतिहर है या जो किसान है वो गौण मालिक है, और इस कारण से वो राजा को कर देता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर जो है वो हम उसमें रह रहे हैं, और रहने के लिए भगवान ने हमको सुविधा दी है, लेकिन इस शरीर के मालिक भगवान है, इसलिए शरीर से जो कर्म है वो भगवान के लिए किए जाने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है, ये तो हमने पहले ही समझा दिया था, आंख नाक कान स्किन त्वचा, इस प्रकार से परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। इसको समझ लेना चाहिए कि हम कुछ देखते हैं तो देखने से पहले भगवान देखते हैं। हमें देखने की, बोलने की, सोचने की, सुनने की, सूंघने की, छूने की जो भी क्षमता है हमारे पास, वो सब भगवान से आती है। तो हम क्षमता है हमारे पास ये सारे कार्यों करने के लिए, लेकिन इनको जो हमारी इंद्रियां हैं उनको नियमन करने की क्षमता वस्तुतः भगवान के ही पास है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण हैं, और हम लोग इन इंद्रियों को किराए पे यूज कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किराए पे किसी का खेत लेता है और उस पर कुछ बोता है, उसी प्रकार से जो हमारा शरीर रूपी खेत है जिसमें इंद्रियां हैं, उनको हमें वो हमें भगवान के द्वारा किराए पे मिली हैं एक जीवन के लिए, और इसको हम भगवान की सेवा में नियोजित हमें करना चाहिए। ये प्रॉपर उपयोग है। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है, वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। अर्थात शरीर का स्वामी है आत्मा, और शरीर इन दोनों को जानने वाला है, जानने वाले हैं भगवान। ये भी अद्भुत बात है कि भगवान परम ज्ञाता है, क्योंकि शरीर आत्मा को तो जानता जान ही नहीं सकता है, शरीर तो अचेतन वस्तु है, और आत्मा जो चेतनशील है वह भी सामान्य अवस्था में बद्धावस्था में भगवान को नहीं जानती। वो केवल अपने शरीर का अनुभव करते हैं, और शरीर का भी ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं होता है। जैसे हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो भले ही हमारे शरीर में रोग है, लेकिन हम उस रोग की जानकारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो भले ही हम इस शरीर के सुख दुख को समझते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझते हैं शरीर में क्या हो रहा है। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई कल रात से लेकर अब तक कितनी बार आपका हृदय धड़क गया है, तो क्या हम जानते हैं? ये हमारे सर पे कितने बाल हैं, तो हम जानते हैं क्या? तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि शरीर के बारे में हम जानते नहीं हैं वस्तुतः, लेकिन फिर भी अनुभव है कि मैं शरीर में हूँ, और अपने शरीर का ही अनुभव होता है। तो इसलिए हम ज्ञाता हैं, लेकिन परम ज्ञाता भगवान है। उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। इसका अर्थ है कि ज्ञान का अर्थ है अपने को शरीर से पृथक समझना आत्मा के रूप में, और अपना संबंध भगवान से परमात्मा के रूप में समझना, ऐसा कृष्ण का मत है। इसका अर्थ है ऑब्वियसली भगवान कृष्ण का मत है, मतलब इससे बड़ा श्रेष्ठ मत किसी का नहीं है। और कोई भी व्यक्ति कहे कि भाई मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो ये ज्ञान अगर आत्मा परमात्मा और शरीर के संबंध में नहीं है, तो वस्तुतः वो ज्ञान नहीं, आपको अज्ञान दे रहा है भगवान कृष्ण के मत के अनुसार। और ये भी अद्भुत बात है कि आजकल के माता पिता लड़कों को बहुत सारा तथाकथित ज्ञान देने के इच्छुक होते हैं। मैथ्स पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, लेकिन हो कौन तुम, इस बारे में कोई भी चिंता नहीं होती है, ना तो माता पिता की होती है और ना बच्चों को होती है। और न ही चिंता होती कि अरे बच्चा मेरा आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, कोई चिंता नहीं होती है। तो आप ये देखिए कि अज्ञान देने के लिए माता पिता को बहुत चिंता होती है, लेकिन भगवान के अनुसार ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का, तो उसको देने की चिंता होनी चाहिए, वही ज्ञान है और बाकी सारा सब अज्ञान है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही सच्चिदानंद विग्रह हैं, लेकिन आत्मा भगवान का अंश होते हुए भी भगवान का दास है, भगवान भगवान नहीं बन सकता है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। कर्म क्षेत्र मतलब शरीर और कर्म का ज्ञाता मतलब आत्मा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत से सो कॉल्ड तथाकथित साधु होते हैं जो बोलते हैं कि आत्मा बद्धावस्था में तो भगवान नहीं है लेकिन मुक्तावस्था में भगवान बन जाएगी, तो ये भी गलत धारणा है और ये लोग महान घोर अज्ञान में हैं। इस प्रकार की विवेचना करने वाले लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा। मनुष्य को प्रकृति पुरुष यानी प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है, इसी को संबंध ज्ञान कहते हैं। एक आप ट्रायंगल बना सकते हो, ट्रायंगल मतलब त्रिकोण, उसके ऊपर में भगवान को रखिए यानी ईश्वर को, किनारे में जीव को रखिए और एक किनारे में माया को रखिए, तो ईश्वर से जीव का संबंध, जीव का प्रकृति से संबंध और प्रकृति का भगवान से संबंध, इस प्रकार से इन तीनों के संबंधों को समझना ये संबंध ज्ञान कहलाता है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। इन उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। अर्थात भ्रम का अर्थ क्या है, हमारा भ्रम यह है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, यह अज्ञान है, और भगवान को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, ये बहुत बड़ा अज्ञान है, और अपने को अगर भगवान मानने लग जाए तो महाघोर अज्ञान है। तो ये सारी बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और माया क्या है या प्रकृति क्या है। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। देखिए अभी जो आप त्रिकोण बना रहे हैं तो उसी समझ में आ जाएगा कि प्रकृति का भोग भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान को इस भौतिक प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, वो तो आध्यात्मिक प्रकृति में स्थित रहते हैं हमेशा, लेकिन जीव को आसक्ति है, बद्ध जीव को भी, सारे जीवों को नहीं, बद्ध जीव को इस भौतिक प्रकृति को भोगने की आसक्ति है, इस कारण से वो भोगने में लगा रहता है। लेकिन दोनों के नियामक भगवान हैं, हम प्रकृति के नियामक नहीं हैं, हम प्रयास कर रहे होते हैं कि प्रकृति को हम भोग करें, लेकिन एक्चुअली प्रकृति के नियामक भगवान हैं, और इस चीज को भगवान नवे अध्याय में बता चुके हैं, मया दक्षिण प्रकृति सुयते स चराचर। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, श्वेता श्वेतर उपनिषद 1:12, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतद्। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, यानी सब कुछ भगवान की शक्ति है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में है, भगवान की बहिरंगा शक्ति के रूप में जो कि अचेतन होती है, लेकिन जीव ब्रह्म है अर्थात भगवान की पराशक्ति के रूप में, भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था। तो पराशक्ति अर्थात भगवान की चेतन शक्ति, हम हैं ये हम महसूस कर सकते हैं लेकिन प्रकृति ने महसूस नहीं कर सकती। दूसरा, प्रकृति जीव को आकर्षित नहीं कर रही है, जीव स्वयं प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं जल मुझको जल अग्नि या वायु मुंह मुझको माया में मोह में डाल रहा है, ना, मैं स्वयं मोह में पढ़ करके अपने आप को अपने शरीर से अपनी पहचान करके इन वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति पेड़ को पकड़ ले और बोले, चिल्लाए, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, तो क्या पेड़ ने उसको पकड़ा हुआ है? ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी अगर हम ऐसा सोचें कि माया ने हमको पकड़ा हुआ है, हम माया को पकड़े हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो एक बात। दूसरा बात, इनके नियामक भी ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण, और उनके ही संचालन से ये दोनों अर्थात प्रकृति और जीव नियमित हो रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं शब्द को आप जरा देखिएगा, हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं नियंत्रण करने का। अर्थात ऐसा नहीं कि भौतिक प्रकृति हमारे नियंत्रण में है, हम खाली सोच रहे हैं कि नियंत्रण में है और इस कारण से प्रयास में लगे हैं, और यही माया है। माया हमारे नियंत्रण में है नहीं, लेकिन सोचना कि मेरे नियंत्रण में है, ये माया है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना चाहिए इस श्लोक से। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है, यानी भगवान कृष्ण, जो अपने स्वरूप को कभी नहीं भूलते और माया के अधिपति हैं, तो दूसरा अच्युत अर्थात जीव, जो कि गिरने की संभावना रहती है। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है, भगवान श्रेष्ठ हैं और हम अधीन हैं। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। इंटरेस्टिंग है, भगवान ही बोल रहे कि मैं ही ज्ञाता हूं। मैं भी मतलब मैं, भगवान का व्यक्तित्व वो अलग रहता है और जीव का व्यक्तित्व अलग रहता है। जीव भी अपने जीव के अपने शरीर के बारे में जानता है, प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, और भगवान भी जानते हैं, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का जो व्यक्तित्व है वो नष्ट हो जाता है, और इसका अर्थ ये भी नहीं कि जीव का व्यक्तित्व जो है वो नष्ट हो जाता है। दोनों ही व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं। इसको समझ लेना चाहिए, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस। आप सब लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि आप इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, लेकिन ना तो मेरा मोबाइल फोन जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये अनुभव कर सकता है, और ना आपका मोबाइल फोन जिसके द्वारा आप सुन रहे हो ये अनुभव कर सकता है कि वो लेक्चर सुन रहा है, ये लेक्चर बोला जा रहा है। तो ये एग्जिस्टेंस का अनुभव, कि मैं अस्तित्व का अनुभव, इसको सत्ता कहा जाता है। तो मैं अनुभव करता हूँ, अनुभवशील व्यक्ति हूँ, भोगने की क्षमता है, तो इस प्रकार से मैं प्रकृति पे प्रभुता का सामर्थ्य रखता हूँ, और ये सामर्थ्य की जो गुण है वो भगवान से ही आ रहा है। भगवान परम रूप से प्रकृति को संचालन करते हैं और मैं अणु मात्र से करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं अणु हूँ, लेकिन मैं क्योंकि भगवान का अंश हूँ तो इस कारण से भगवान का ही गुण हमारे जीवन में परिलक्षित होता है। लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो ये तो स्पष्ट है, मैंने बता दिया आपको, यानी कि प्रकृति भगवान को मोह में नहीं डाल सकती है, लेकिन जीवों को जो उस पर भोग करने का प्रयास करते हैं और जितनी मात्रा में भोग करने का प्रयास करते हैं उनको मोह में डाल देती है। यहां पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। ये भी इंटरेस्टिंग है, च अर्थात सभी शरीरों को जानने वाले हैं भगवान। कहां शब्द आया था ये, क्षेत्रज्ञम अपि चापि माम विद्धि। तो च शब्द का अर्थ यहां ये दिखा रहा है कि मैं सभी शरीरों को जानता हूं, मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है, महान आचार्य हैं जिन्होंने भगवद्गीता की टीका लिखा है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहां पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। विशिष्ट भोक्ता मतलब जीवात्मा और कर्म क्षेत्र मतलब हमारा शरीर, इन दोनों के नियामक हैं भगवान ही। आगे बताएंगे 15वें अध्याय में, मैं ही बुद्धि देता हूँ, मैं ही विस्मृति देता हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि जीव को भोग करने की शक्ति भी इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंटली भोग भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी निर्भरता को और प्रकृति की निर्भरता को भगवान के ऊपर समझे और भगवान की शरणागत हो।